نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير amazed by الأسماء الحسنى. آج ہم اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام الحکم سیکھیں گے. میں چند سیکنڈ خاموش رہوں, آپ ذرا لکھیے تو صحیح, خود سے پوچھئے کیا ہوگا الحکم میں. لفظ حکم, حاکم, حکمران, اور کیا کیا بنتا ہے اسے, حکمت, اور ہم ہوتے تو کہتے الحاکم اس کا نام ہے, پر یہاں تو حکم ہے, معنی کا ایک سمندر ہے. آج بھی اپنے لسٹ بنانی ہے اور ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام کس کس مختلف اینگل سے ہماری زندگیوں میں اپنی جگہ رکھتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے خوبصورت نام الحکم, ہا کاف میم اس کا روٹ ہے, الحکم ہے. ہم اردو میں عام طور پہ حکم پڑھتے ہیں, تو الحکم کے لغوی معنی کیا ہوں گے, یہ کیا نام ہے, اور پھر اس کو اگر ہم اسلامک ٹرمنالوجی میں دیکھیں تو یہ کیا لفظ ہے, اٹل فیصلے کرنے والا. لفظ حکم سے جو حکم حاکمیت کی بات ہے نا, وہ سائیڈ کی بات ہے. حاکم کو حاکم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس فیصلوں کا اختیار ہوتا ہے. آپ میں نہیں کر سکتے کسی چیز کو ڈیسائیڈ کہ ریڈ لائٹ پہ نہیں کھڑا ہونا اور گرین پہ کھڑا ہونا اور یلو پہ ہونا اور ٹیکس اتنا اور چھٹیاں ہیں کہ نہیں, لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ نہیں, لیکن حکمرانوں کا یہ اختیار ہے. تو اصل میں آج بات ہوگی تو فیصلوں کی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ حاکم کے معنوں میں فیصلے دینے والا, اور اگر اس کا بالکل اصل ٹرم میں لے کر جائیے نا معنی, تو کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینا. یہ جو حکمران بیچارے باتیں سن سن کے بھی پھر بھی کھڑے رہتے ہیں نا, اصل میں وہ عوام کی اصلاح چاہتے ہیں, ان کے لیے کرتے ہیں. اور کوئی کہیں بھی حاکم ہے, حکم بچے, ماں باپ بچوں کے لیے کوئی فیصلہ کرے, بچوں کو پسند ہی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں چاکلیٹ کھانی ہے, وہ کہتے ہیں کھجور کھاؤ, نہیں پسند آتا نا, تو پھر نوٹ کیجئے, کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینا. آپ بچوں کو روکتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کو روکتے ہیں, آپ لوگوں کو کئی دفعہ ایسی چیزوں سے روکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں نیکی سے روک رہے ہیں, لوگ آپ قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں, لوگ کچھ چلو اسی بہانے لوگ قرآن پڑھتے ہیں آپ روک رہے ہیں, تو پھر کیا ہے, اٹل فیصلے کرنے والا. جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرے اسے حاکم کہتے ہیں, اور ماہر حاکم کو حکم کہا جاتا ہے, یعنی اس میں مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے, ایکسیجریشن ہے اصل میں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا تقریباً ہر دن ہی ہم کہتے ہیں, ہر نام کے اندر سپرلیٹیو ڈگری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الحکم, اگر آپ اس کے اصطلاحی معنوں میں جائیں تو رک کر سوچئے ذرا کہ کیا آج تک کی زندگی میں جب بھی کبھی کسی فیصلے کی بات ہوئی تو میں نے الحکم کو یاد کیا. تو لکھیے ایک تعریف, الحکم وہ ذات ہے جس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کر سکے اور جس کے حکم میں کوئی پسو پیش نہ کر سکے. دنیا میں لوگ فیصلے کرتے ہیں, لوگ ہڑتالیں کر دیتے, ایجیٹیشن ہو جاتی, بچے نہیں مانتے, اور اگر کوئی فیصلہ نہ بدلوا بھی سکے تو پاؤں پٹک کے جا کر کمرے میں بیٹھ جاتا. تو الحکم تو پھر اس سے بہت ہی مختلف ہے. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے سارے فیصلے ہوتے ہیں, ایک نہیں الحکم, ہر فیصلہ اس کی طرف سے ہوتا ہے. اور جو کوئی فیصلہ اللہ رب العزت کی جانب سے دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں صادر ہو جائے پھر وہ ہو کر رہتا ہے. کیا صرف دنیا میں؟ نہ نہ نہ, الحکم وہ ہے کہ دنیا کے سارے فیصلے جو بھی ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے وہ تو ہے ہی, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جہان فانی میں انسانوں کے رزق کے فیصلے, امن کے فیصلے, جنگ کے فیصلے, صحت کے فیصلے, چین اور راحت کے فیصلے ہوں, موت اور زندگی کے فیصلے ہوں, اولاد کے فیصلے ہوں یا بارش کے فیصلے ہوں, سوچیے تو صحیح, مصیبتوں اور مصائب کے فیصلے, کرونا وائرس آنے کے فیصلے, اس کی ویکسین کے آنے کے فیصلے, اس کی سیکنڈ ویو آنے کے فیصلے, اب یہ ہو گیا, اس کے بعد, اس کے بعد, اس کے بعد, ہر چھوٹا اور بڑا فیصلہ الحکم کی طرف سے. زندگی میں سب سے مشکل چیز فیصلہ کرنا, اور ہم نے اپنے الحکمت البالغہ کے بالکل شروع کی انٹروڈکٹری سیشنز میں فیصلوں پہ بات کی تھی, ڈیسیژن مینجمنٹ. ہم سب اپنے فیصلوں ہی کے بدلے میں دنیا میں مختلف حالات سے دوچار ہیں, सब अल्लाह की तरफ से होते हैं। और याद रखिए कि अल्लाह की तरफ से इसलिए कि इनिल हुक्म लिल्लाहि वहदहु ला शरीक लहू फी हुक्मी ही कमा ला शरीक लहू फी इबादती ही قال الله تعالى ولا يشرك في حكمه احدا। सूरत अलकहफ के बिल्कुल एंड पे आप हर रोज या हर जुमे को पढ़ते होंगे, आखिरी आयतों में से एक आयत है कि बेशक तमाम का तमाम हुक्म अल्लाह ताला ही के लिए, इसके हुक्म में कोई शरीक नहीं, जैसा कि इसकी इबादत में कोई शरीक नहीं, और नहीं शरीक करता अपने हुक्म में किसी को भी, यानी ना कोई इसका मुजाहिम है। दुनिया में हुकूमत फैसले करती है तो हिस्ब इख्तलाफ तनकीद करते हैं, वो कहते हैं पेट्रोल महंगा होगा, वो सारे खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं इस साल ये होगा वो होगा। तो याद रखिए अल हकम वो है जिसका फैसला नाफिज होकर रहता है, और फैसला करने का हकदार भी वही है असल में। और दूसरे जो करते हैं अपनी अक्ल समझ से करते हैं, अल हकम वो है किसका फैसला सरासर अदल और खैर वाला होता है। माँ बाप भी इवन अपने बच्चों के लिए सही फैसले नहीं करते, कभी खुद चुन के अपने बच्चों के लिए तबाही की चीज़ ढूंढते हैं। माँ बाप कितनी जान लगा कर ठोक बजा के रिश्ते करते हैं बेटे बेटियों के, दो माँ बाप पता चल गया गलत चीज़ हो गई, सही नहीं चूज के। माँ बाप के हाथों से बच्चियों को तकलीफें होती हैं, वो घर आ जाती हैं, अपने जूते तुड़वा तुड़वा के माएँ जाती हैं लड़कियाँ ढूंढ ढूंढ कर, एक लाती कहती है उस जैसी है कोई नहीं। बेटा कहता है अम्मा आप जहाँ कर देंगी मैं करवा लूँगा। 4-6 महीने में पता चल गया कि अम्मा ने जो फैसला किया था गलत था, लेकिन अल्लाह के फैसले ना सिर्फ ये कि सही अदल और खैर वाले, फिर आप फैसले करते रहे लोग मानते ही नहीं। कौन मानता है? आज कितने लोग हैं जो आपके किए हुए फैसले माने? वो तो सहाबा जैसे लोग थे ना जो गुजर गए, कि हुदैबिया के मौके पे ना समझ में आने वाला फैसला भी मान के चल पड़े। अक्ल तो इस्तेमाल करते, अक्ल तो कह लीजिए कि आती नहीं थी उनके रास्ते में, हमारी अक्ल जो फैसला करती है हम उसको मानते हैं। तो पूरी आज़ादी से जैसा चाहे फैसला करें। इसी पे रुक कर अपने आप को चेक कीजिए, लिखिएगा अपने लिए, अल्लाह सुबहान तआला चूँकि अल हकम है और फैसलों के साथ ताल्लुक है इल्म का, तो जिस तरह इसका इल्म सारी कायनात पे मुहित है ना, इसकी कुदरत और इख्तियार भी सब पर हावी है। जैसे आसमान ज़मीन की पोशीदा बातों के जानने में इसका कोई शरीक नहीं है, नहीं जानते ना ऊपर में ज़मीन की तहों में क्या और सातवें आसमान पे क्या और चौथे पे और तीसरे पे क्या है, तो फिर उसके इख्तियारात और उसकी कुदरत में कोई शरीक कैसे हो सकता है? और दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक और बातिल के दरमियान फैसले फरमा देता, और ये अल्लाह का फैसला है कि हक हमेशा कामयाब होगा और बातिल हमेशा नाकाम होगा। कुल जाल हक वज़हक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। तो अल हकम वो है कि जिसने नबी सल्लम और आपके सहाबा की मुख्तसर सी जमात को उस वक्त की बड़ी ताकत के मुकाबले में फतह नसीब फरमाई और हक का बोलबाला हुआ। और याद रखिएगा कि अल्लाह सुबहाना ताला क़यामत के दिन इंसानों को दो गिरोहों में तकसीम करेगा। एक वो होंगे जिनके लिए सआदत का फैसला होगा, सीक अल्लज़ीना तक़ौ इला रब्बिहिम ज़ुमरा, सईद खुशबख्त, और दूसरे वो होंगे जिनके लिए बदबख्ती का फैसला होगा। जिस किसी ने ईमान और तकवा वाली ज़िंदगी गुजारी होगी इसके लिए सआदत का फैसला होगा, खुशबख्ती का, और उसका ठिकाना जन्नत होगी, और जो बेअमल रह गया जो बेईमान रह गया उसके लिए बदबख्ती और शकावत का फैसला होगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। आप कह सकते हैं कि अल हकम वो है कि दुनिया की तरह आखरत में भी दूसरे जहान में भी उसी के फैसले चलेंगे। क़यामत कब आनी है, कहाँ आनी है, किस वक्त आनी है, अल्लाह कहता है किसी से ना पूछो मुझे पता है। सूरत हज में जाके देख लीजिए, इन्न सात अल्लाह आती है, तो आने वाली है पर उसका वक्त अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। तो खैर और शर के दरमियान हकम और फैसला करने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। जिस चीज को अल्लाह ने शर करार दिया वही हकीकत में शर है, और जिसको वो खैर करार दे दे वही हकीकत में खैर है। आपका मेरा काम क्या है कि अल्लाह के फैसलों को मान जाए, कबूल कर लें। उसने आपके मेरे लिए जो कुछ मुकर्रर किया है ना उसको आमन्ना व सद्दकना कहिए। याद रखिए कि अल हकम के फैसले दो तरह के होते हैं। ये बड़ी एक क्लासिफिकेशन बताने लगी हूँ, इसके अंडर भी बहुत सारी आती हैं। अल हकम के फैसले दो तरह के, एक है जिसको कहते हैं कौनी हुक्म। कौनी का लफ्ज़ जहाँ भी आए तो कायनात को याद रख लें, कायनात में फैले हुए, कायनात लफ्ज़ भी इसी से ही है। इस कायनात में जो होगा जैसे होगा, मसलन कौन कब पैदा होगा, कब मरेगा, बारिश आएगी कि नहीं आएगी, कहत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वबा फैलेगी कि नहीं। यानी इस कायनात में जो कुछ हो रहा है, इंसान दुनिया में आएगा, आप बहन भाइयों में किस नंबर पे हैं, आप अरब में पैदा हुए कि अजब में, आप गोरी हैं कि आप काली हैं, आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपके मामू कितने, आपके चचा कितने, आपकी खाला कितनी, आपकी फुफो कितनी, या अल हकम के फैसले हैं। इंसान को हमेशा अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ नजरें लगाना चाहिए। जितना ज्यादा अल्लाह के ये पहले फैसले हैं ना, जिसको कौनी फैसले, इसका ताल्लुक तकदीर से है, लिख लें अपने दिल पे। आपकी तकदीर का हर फैसला अल हकम का फैसला है, और जितना ज्यादा अल हकम के फैसलों पे आप राजी हैं, आपकी जिंदगी में उतनी खुशी, उतना सुकून, उतने आप राजी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो फैसले जिसको आप कौनी फैसले कहते हैं ना, इसमें हमारे लिए खैर होती है, क्योंकि वो हकम के साथ साथ लतीफ़ुन खबीर भी हैं। वो हमारे ऊपर मेहरबान है और इस फैसले के अंजाम से भी बाखबर है। जितना ज्यादा अल्लाह के फैसलों पे और कौनी फैसलों पे आप राजी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। एक अरब स्पीकर हैं, नासिर बिन मुसफर, डॉक्टर हैं बेसिकली, प्रोफेशन में शेख के दर्जे पे हैं। कहते हैं कि बंदे का अपने रब से राजी होने के मानी ये है कि अल्लाह ताला ने इसके लिए जिस चीज का फैसला कर दिया हो, इस पर राजी हो जाए, और अल्लाह ताला का अपने बंदे से राजी होने का मानी ये है कि वो अपने बंदे को हर वक्त अपनी फरमाबरदारी में रखे। यानी अपने बंदे को हर वक्त अपनी फरमाबरदारी में देखे और इसे हराम करदा उमूर से बचते हुए देखे। क्या पता चला, बड़ी से बड़ी रजामंदी जो किसी बंदे को हासिल हो, वो अल्लाह तबारक व ताला की रजामंदी है। इसीलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं इसको रिजवान, बड़ी रजा। यब्तगून फ़ज़लम मिनल्लाहि व रिदवाना, सूरत अल फतह की आयत 29 में आता है कि वो अल्लाह का फजल और उसकी रजा चाहते हैं। सहाबा का तारुफ है उधर। यदि मोमिन का तरीका अल्लाह की रजा हासिल करने का ये है कि उसके फैसलों के ऊपर राजी रहे, उसके फैसलों को अपने दिल जान से कबूल करे। और अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया कि आज अबो अमरुल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब है, क्योंकि सिर्फ आप इस एक कौनी हुक्म पे अपनी नजरें जमा के मेरी बातें अगर सुन लेना, तो आप लिख लीजिए कि वो जिसको कहते हैं ना कि पा लिया पा लिया पा लिया, क्या पा लिया? खुश रहने का राज पा लिया। और वो क्या है? खुशी हो के गम, ये रब का फैसला है। बीमारी है कि सेहत, रब का फैसला है। तन्हाई है कि शहनाई है, रब का फैसला है। आपने बेटा मांगा, बेटी हो गई, रब का फैसला है। आपने चाहा कि दौलत आ जाएगी, नुकसान हो गया, लगी हुई कमाई जाया हो गई, ये रब का फैसला है। आप अल्लाह के फैसलों पे राजी हैं कि अपने फैसलों पे राजी हैं? जितना आपको रब के फैसलों का यकीन आता जाएगा, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आप अपने आप को इतना मुतमईन महसूस करेंगे कि आप कहेंगे सारी दुनिया एक तरफ, मेरे रब का फैसला एक तरफ। और जितना आप इस पे रहेंगे, आप खुश रहेंगे। डिप्रेशन तो होता ही नहीं ऐसे बंदों को। और हदीस तो जुबानी याद कर लीजिए कि अजबल अमरिल मोमिन अन्नाम रहू कुल्लहू लहू खैर। मोमिन के काम तो बड़े अजीब है। यानी अल्लाह के नबी हैरत कर इजहार करें कि मोमिन के मामलों पे बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है। क्या? यानी जिसको आप कहते हैं ना अमेज्ड ऑन मैटर ऑफ मोमिन, कैसे कि उसके हर मामले में खैर ही। वलई सजा लिकलिया हदिन इल्ला लिल मोमिन, और ये खैर सिर्फ मोमिन के, उसके सिवा और किसी को नहीं मिलती। अब सोच में आता है क्या आखिर क्या फरमाई नसा बत हुसर्रो, अगर उसको पहुंच जाए खुशी, शकरा शुक्र करता है, फकाना खैर अल्लाहु, और ये शुक्र इसके लिए खैर बन जाता है। वही नसाबत हु दर्राओ, और अगर इसे कोई जरर की बात पहुंचती है, सबरा तो सबर करता है, फकाना खैर अल्लाहु, और ये उसके लिए खैर बन जाता है। यानी मोमिन के लिए सबर भी और शुक्र दोनों खैर, खुशी भी खैर गम भी खैर। ये मुस्लिम की रिवायत है किताबु जोहत में, जिसको कहने वाले कहते हैं कि मोमिन के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अल्लाह हमें मोमिन बना दे, हमारी जिंदगी में गम आएगा भी नहीं, आएगा तो महसूस ही नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि मुझे तो नहीं कभी किसी ने दुख दिया, मुझे तो कभी किसी ने बुरा नहीं कहा, मेरी तो कभी किसी ने बुराई नहीं की, मेरे बारे में तो कभी कोई बुरा नहीं कहता। याद रखिए, ये हदीसे मुबारक कई नफ्सियाती बीमारियों की दवा है और बहुत सारे अमराज के लिए शिफा का सबब है। जितना इस हदीस पर गौर किया जाए, इसके मानी को दिल और दिमाग में बिठाया जाए, कितनी परेशानियों और बेचैनियों को दूर होने का जरिया बन सकती है ये चीज। तो आप कह सकते हैं परेशानियां दूर करने का अक्सीर नुस्खा अल हकम के मानों पर गौर किया जाए। कहिए ऊंची आवाज से, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेंगे। अल्लाह ताला का फैसला अटल है, इसके इरादे के बगैर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा बाल बीका नहीं कर सकता कोई। और नोट कीजिए सूरत बकरा आयत 102 में हारूत और मारूत के किस्से और जादू के तनाजर में क्या आयत पढ़ी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। जिसने भी कुरान का सफर शुरू किया वो यह आयत जुबानी जानता है, वमा हुम बिदारी नबी ही मिन अहदिन इल्ला बिस्निल्ला। दरअसल वो बगैर अल्लाह की मर्जी के किसी को भी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, तो क्या पता चला कि नफा और नुकसान के फैसले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होते हैं। इसलिए कभी भी परेशानियों का हल तलाश करने के लिए किसी झूठे आमिल के पास मत जाइए। प्रोफेसर, ज्योतिषी, पामिस्ट्री, किस्मत मालूम करनी, हफ्ता कैसे रहेगा, हफ्ता कैसे गुजरेगा, आपके सितारे किसके साथ मिलते, शादी कैसे होगी, किधर होगी, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किसी साहबे कब्र की कब्र में जाकर अपने आप को बुरा ना के कभी भी मौका मिले तो अल-हकम के दरबार में गिड़गड़ा कर मांगिए, क्या मेरे मालिक मेरे बारे में सही फैसले करना, क्योंकि हकीकतन परेशानी और खुशी दोनों अल्लाह की तरफ से होती है। हत्ता कि मौत और जिंदगी भी अल्लाह के हुक्म और फैसले से होती है। यहाँ तक कि सारी दुनिया की ताकतें मिलकर किसी को मारना चाहें और अल्लाह उसके मुकाबले में जिंदा रखना चाहें तो कोई ताकत भी मौत वाकई नहीं कर सकती। इस तरह अल्लाह सुब्हान तआला किसी को मौत देना चाहे और दुनिया की सारी ताकतें उसे जिंदा रखना चाहें तो कभी भी कोई जिंदगी नहीं बख सकती। और याद रखिए अल्लाह सुबहाना ताला के फैसलों पे राजी रहना होगा और इनको मानने के बाद ही तो असल में जीने का मजा आता है। हम अपनी जिंदगी को जितना ज्यादा अल्लाह ताला के फैसलों के मुताबिक ढालते जाएंगे ना तो आपको फायदा होगा। तो ये जो कौनी फैसले हैं ना इसको मानना हमारी मजबूरी है। लिखिए अपने पास कि इस पे चॉइस कोई नहीं है, वी हैव टू, कोई माने ना माने उसको मानना पड़ेगा। और याद रखिए कि अल्लाह के नबी ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो बिल्कुल अभी यंग एज यानी अर्ली टीनेजर थे उनसे क्या कहा। खुद इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी एक सवारी पर सवार हुए और मुझे अपने पीछे बिठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद आप मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, या गुलाम, ए लड़के, यानी लड़के के लिए अरबी में लफ्ज गुलाम आता। मैंने अर्ज किया, हाजिर हूँ। आपने फरमाया, इहफिज़ुल्लाह, तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। तुम अल्लाह को याद रखोगे तो इसको हर हाल में अपने सामने पाओगे। तुम अमन और आफियत और खुश ऐशी के वक्त अल्लाह को पहचान लो तो तुम्हारी मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला तुम्हें पहचानेगा। जब तुम्हें सवाल करना हो तो सिर्फ अल्लाह ताला से करो, मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। और जो कुछ दुनिया में होने वाला है कलमे तकदीर इसको लिख चुका। और उसके बाद मशहूर हदीस है, आपने बीसियों बार पढ़ी सुनी हुई है, आपने फरमाया अगर सारी मखलूकात मिलकर इसकी कोशिश करें कि तुमको कोई नफा पहुंचाए जो अल्लाह तुम्हें नहीं देना चाहता, जिसका फैसला अल्लाह ने नहीं किया, तो हरगिज ऐसा ना कर सकेंगे। और अगर सारे मिलकर कोशिश करें तुमको नुकसान पहुंचाएं लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में नहीं रखा तो हरगिज ऐसा ना कर सकेंगे। अगर तुम कर सकते हो तो यकीन के साथ सब्र और अमल करो, तो ऐसा जरूर कर लो। मगर इस पर कुदरत नहीं तो सब्र करो, क्योंकि अपनी खिलाफे तबा चीजों पर सब्र करने में बड़ी खैर और बरकत है। खूब समझ लो कि अल्लाह की मदद सब्र के साथ है और मुसीबत के साथ राहत और फराखी है। तिर्मिजी की रिवायत है ये सिफतुल क़ियामा में। तो क्या पता चला कि जब आप अल्लाह के फैसलों पर इतना यकीन रखें फिर आपकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान के वाज़ेह ऐलान और अल्लाह के नबी की सारी जिंदगी की तालीमात के बावजूद आज की उम्मत फिर इस मामले में भटकने लगी। सारे खुदाई इख्तियारात मखलूकात को बांट दिए, कभी बराह रास्त किसी मखलूक को हाजत रवाई के लिए पुकारा, उससे हाजतें मांगी और कहीं सजदे किए। ये कुरान के इन हुक्मों की भी नाफरमानी है और अल्लाह के नबी के फरामीन की भी। किसी ने आज सुबह मुझे एक वीडियो भेजी कि देखिए क्या हो रहा है। दो कमरे साथ साथ थी और एक ही मखसूस रंग का, जैसे हरम में आप देखें तो ग्रुप्स आते हैं ना, एग्जैक्टली एक पीले पीले रंग के कपड़े, ग्रे और ब्लैक से, कोई ऊपर पट्टे गले में और सर पे टोपियां, और दो कब्रों के इर्द गिर्द लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द हो रहा है। कब्र के इर्द गिर्द पढ़ लब्बैक सही रहे थे ऑफ कोर्स, बट कहाँ पढ़ रहे थे तुम साहिब कब्र के इर्द गिर्द? क्या ये सवाब होगा इस लब्बैक का? तो याद रखिएगा अल्लाह सुबहाना ताला वो जात है जो आपको मुझे ऐसे मौके देता है। और जितना ज्यादा आप अल्लाह के इन फैसलों पे राजी हैं आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं। फिर इसके जो दूसरी किस्म के फैसले हैं ना इसको शरई फैसले कहते हैं। इसका नाम शरीयत है असल में, दीन के हुक्म हो। बंदों के लिए अल्लाह ने जिसको हलाल कर दिया वो हलाल है, जिसको हराम कर दिया वो हराम है। अल्लाह शरीयत में चार चीजों को हराम करके बाकी सारी शरीयत हलाल कर दे उसका फैसला है। अल हकम वो है जिसने जन्नत सारी हलाल करके एक शजरे ममनुआ रखकर आदम से कहा ला तकरबा हाजी शजरा, हकम है उसका फैसला। कोई क्या सवाल करता क्यों क्या था, गंदुम का दरख्त था क्या, क्यों गंदुम दरख्तों पे उगती है, बात समझ गए। तो शरीयत के फैसले जिसमें आपके मेरे पास चॉइस है, मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन ये याद रखना कि ला यस्तवी असहाबल जन्नती व असहाबन नार, जहन्नमी और जन्नती भी बराबर नहीं होंगे। अल्लाह ताला कहते हैं मालकुम कैफ तहकुमुन, तुम्हें क्या हो गया, यानी अगर हम इस शरीयत को ना मानेंगे तो फिर इंजाम आपके मेरे हाथ से निकल जाएगा। आप 100 की स्पीड की बजाय 120 की चलाइए, 50 की चलाइए, लेकिन हादसा हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। शरीयत पे अमल करना हर इंसान के लिए लाजिम है। तो याद रखिए कि अल हकम वो जात जिसके फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता और जिसके हुक्म में कोई पसोपेश ना कर सके। इंसानों के रिस्क के फैसले करने वाला, अमन चैन राहत के फैसले करने वाला, मौत और जिंदगी के फैसले, औलाद के फैसले, कयामत बरपा करने का बहुत बड़ा फैसला, ये सब उसके हाथ में है और उसके फैसलों को कोई रोक नहीं सकता, उसके बारे में कोई बात कर नहीं सकता। अब ये जो अल्लाह ताला के कौनी फैसले हैं ना, इसमें से एक फैसला आपको एक वीडियो के जरिए दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए कि बच्चा माँ के पेट में पसरता है ना, अल्लाह ताला उसका एक बीज डलवा देता है, तो फिर अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की कुदरत से वो माँ के रहम के अंदर 9 महीने और कुछ वक्त गुजार के बाहर आता है। आप माएँ हैं आप में से जो भी, जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत दी, आप सब जानती हैं 9 महीने से जायद भी गुजर जाए ना, तो माँ को कोई काम ये नहीं होते सिवाय इसके कि नौजिया है, तकलीफ है, जिस्म बोझल हो रहा है, उसको नहीं पता है नाक बनानी, कान बनाने, ये करने वो करने। लेकिन जरा सा देखिएगा तो सही, अल हकम का फैसला आपके मेरे इस जिस्म पे कहाँ का है। आपके सामने एक एजुकेशनल वीडियो है, आप जरा सा इसको सुकून से देखिए। आपके मेरे जिस्म में इतनी मशीनें चल रही हैं इस वक्त, ये देखिएगा, ये चक्कियां चल रही हैं, अभी आप एक एक सिस्टम देखेंगे। आपके जिस्म में आपके खाने का एक लुकमा जो अभी आपकी जुबान पे जाएगा, आप इसकी बाइट ले रहे हैं, आप देखिए आप खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये ग्रारियां लगी हुई हैं, ये आपके खाने को इमल्सीफाई कर रहे हैं, एसोफेगस से गुजरता हुआ ये खाना एक लिक्विड सी शक्ल में आपके ये स्टमक में पहुंच गया इस वक्त। और इसको ये रास्ता पता है, ये किसका फैसला है, ये ट्रैक किसका है, स्टमक में इसके ऊपर एसिड्स गिरते हैं, ये देखिए वो आपको पीछे एक आदमी दिखा है, उसको पता चल गया खाना आ गया, और ये आपके अल हकम का फैसला था कि लुकमा जो जुबान से टच करता हुआ दांतों के चबाने के बाद, ये देखिए ये बिग इंटेस्टाइन से अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जा रहा खाना, अंदर सक्शन पंप्स लगे हुए हैं, अब ये देखिए ये इसमें से ग्लूकोज अलग हो रहा है। आपकी बॉडी, आप आलू खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, और आप बत्तर बला खाएं, आप दही बल्ले सड़े भुसे खाएं, जो आपका दिल करता है खाएं, एंड पे जाके आपके जिस्म में खाने के साथ ये होता है। और वो देखिए मशीनें चल चला चला के कैसे आपके जिस्म के अंदर अगे हुए एक लुकमे को ग्लूकोज अलग करती हैं, फ्रक्टोज अलग करती हैं, बाकी चीज़ों को अलग करती हैं। इसी तरह के सारे मामले आपके नर्वस सिस्टम में हो रहे, ये आपके अल हकम का फैसला है। अपने दिल को इस पे रोकिए, जरा सा गौर तो करें इसको। आपके मैदे के अंदर ये सब कुछ किसने रखा, किसी को पता था, माँ को पता था, बाप को पता था, नहीं पता था। आपका खाना स्टमक में जाना है, आपकी ऑक्सीजन आपके लंग्स में जानी है, और आप जिस्म में जो आंखों से देखते हैं वो आंखों के रास्ते से अंदर जाना है, ये किसके फैसले हैं। लिखिए कौनी फैसलों में एक सबसे बड़ा फैसला जो अल हकम ने आपके मेरे लिए किया, हमें सही सालम पैदा कर दिया, सही सालम पैदा कर दिया। आपकी मेरी जिंदगी में ख्याल भी नहीं आया कभी हमें कि क्या हुआ था, खाया कि नहीं, हाय हाय चने खाए हुए हैं, जल्दी करो हजम करने हैं, वो फैसले दे चुका, वो मामलात हो चुके, वो गुजर चुका, आप खा के फारिग, कई तो खाते ही सो जाएंगे, तो कौन ये करता है, अल हकम। स्टमक पे उसका फैसला, इंटेस्टाइन पे उसके फैसले, हर मामले में वो आपके पूरे जिस्म को गाइडलाइन देता है। क्या आप और मैं अपना जिस्म इतना परफेक्ट बना सकते थे। और ये जो ऊपर मशीन है, ये आपको भी एक दिखाया है सिर्फ, अगर आपको एक एक सिस्टम खोल के दिखा दें तो आप कहेंगे अल हकम मेरे दिमाग को ठीक रखना, ये जो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ये जो दिल खराब हो जाता है, ये पेट खराब हो जाता है, ये आप अल्लाह के उस फैसले के खिलाफ कुछ कर रहे होते हैं। आपको ब्रीदिंग है, आजकल कोरोना का जो नाम है, तो आपके जिस्म का डिटेरियोरेशन शुरू हो जाता है ना, एक जम जिस्म में जाता है, आपकी बॉडी सारी की सारी बिगड़ जाती है। आप क्या समझे, ये अल्लाह के फैसले हैं। तो जिस्म में एक चीज अल हकम के फैसले से मुख्तलिफ चली जाए, आपको तो कि हमारे जिस्म में जिसको हमारे यहाँ पित्ता कहते हैं ना, पेंक्रियास, लबलबा, वो एक पेंक्रियाटिक जूस डालता है। जब आपका खाना ये पूरा मैरिनेट हो जाता है ना, तो ऊपर से एक जूस आता है, तो जो चर्बी है और एक्स्ट्राज है ना, वो सब उसमें डाइजेस्ट होते हैं। इसीलिए कहते हैं जिसके पित्ते का ऑपरेशन हो जाए ना, उसको पराठा नहीं देना, क्योंकि वो चर्बी को गलाने वाला एसिड खत्म हो गया अंदर, वो एक एसिड होता है। ये अल्लाह हकम के फैसले हैं। दिल की चक्की अंदर चल रही, दिमाग अपने हिसाब से काम कर रहा है, और आप देखते ही जाएं, देखते ही जाएं, देखते ही जाएं, और हैरान होते जाएं। इस जिस्म को देखते हुए अपने जहन में लाइए, जो मखबूतुल हवास हैं, होते हैं हैंडीकैप, मेंटली रिटार्ट बच्चे देखे आपने कभी, क्या होता है उनका? कुछ लोगों का स्टमक काम नहीं करता, कट जाता है स्टमक। आप बीमारों को जाकर देखिए, आपका घुटना दर्द करता है, नीज प्रॉब्लम। मैं आपको सिर्फ किडनीज का प्रोसेस दिखाऊं ना, तो आप सजदे में जाकर रोने लग जाएंगे। क्या अल्लाह ने अंदर आपके पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह इन बीमारियों को हमसे दूर रखे और हमें इनसे दूर रखे। और आप देखिए कैसे बोझ उठा उठा के सामान ले रहे हैं, अंदर कितनी मशीनें। और मैंने एक जगह पढ़ा था, जब कभी खुद पढ़ते थे तो तब की बातें हैं, कि जिस्म में जितनी मशीनें एक साथ काम कर रही हैं ना, अगर ये जमीन पर रख के लगाई जाए कि आउटसाइड द बॉडी ये सब हो, जैसे आप कहते हैं ना कि आर्टिफिशियली कई चीज़ें अब आ गई आगे, और तो इंसान को कई मील जगह चाहिए। तो बोलिए कि अल हकम, तेरे फैसलों पे मैं राजी हूँ। जिस्म को कभी मिसयूज़ ना करें, कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप अल हकम के बारे में जान जाते हैं ना, तो फिर आपकी नज़रें झुकती हैं। सलफ सालेहीन ने कैसे समझा, इसमें अल गजाली का एक कॉल है, कहते हैं कि अल्लाह ताला वो है कि उसके फैसले को कोई रोकने वाला नहीं। इब्ने हिसार कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सिफत तमाम आला सिफत और अस्माए हुस्ना के मानी के लिए जामे और शामिल है। यानी अल्लाह ताला के अल हकम होने के अंदर सारे अस्मा व हुस्ना और उसकी सिफात जमा हो जाती हैं। यानी इतना कंपाउंड, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नाम है ये। अल हकम सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला, खूब जानने वाला, खूब बाखबर हो, जिसमें ये सिफात नहीं, वल हकम नहीं। अब जरा देखिए, खूब सुनने वाला कौन है? असमी। खूब देखने वाला? अल बसीर। और खूब जानने वाला? अल अलीम। और खूब बाखबर? अल खबीर। यानी अल्लाह के इस नाम के अंदर अल्लाह के बाकी नाम भी आते हैं। इसी तरह जुजाज कहते हैं, असल मानी में मना करना या रोकना, क्योंकि हाकिम दो अफराद या गिरोहों को आपस में लड़ने से रोकता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदों के दरमियान फैसला करने वाले हैं, ना कि कोई और जो दुनिया में फैसला करते हैं, वो भी इसकी नाजिल शुदा शरीयत से इस्तेफादा करते हैं। यानी अल्लाह सुबहान ताला ऐसा अल हकम है कि जो रोकता है, इधर रुक जाओ, इससे आगे खतरा है, इससे आगे अपने आप को ना लेके जाना, तो अल्लाह की शरीयत को मानने में फायदा है। तो लिखिए फिर, अल हकम के फैसलों पर राजी होना है। अपने दिल को चंद बातों का यकीन दिलाइए। नंबर एक, अल्लाह के हर फैसले में हमारे लिए खैर है, बल्कि हमारे नहीं, मेरे लिए खैर है। जितना ये सर्कल क्लोज करते जाएंगे, उतना आपको अल्लाह पे ज्यादा प्यार आएगा। क्यों खैर है? क्योंकि वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, और वो हर फैसले के अंजाम से भी बाखबर है। जरा सी इतनी आवाज से खुद को कहिए, या अल्लाह, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ। देखिए, ये कहना इतना आसान नहीं होता, और वो भी जब जवान बेटा चला जाए, और जब अचानक चोट लग जाए, और जब टांग कट जाए, और उंगली कट जाए। अल्लाह के नबी की एक उंगली थोड़ी ऊपर से कट गई थी खंदक खोदते खोदते, तो आपने कहा, क्या मेरी उंगली तो एक उंगली थी, तू मेरे से पहले रब को जाके मिल गई। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अलअज़ीम। जितना अल्लाह तआला के इस नाम पे गौर करेंगे, आपका दिल अल्लाह की मार्फत और उसकी मोहब्बत से भरेगा।